آگے دیکھیں سورت بلت ہے، 20 آیات ہیں، 90 نمبر کی سورہ ہے، مکہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے بلت. اس کا مین تھیم کیا ہے کہ انسان اپنی قابلیت اور پیسے کے لالچ میں ہے، یعنی ہر وقت اس کو کیا لگا ہوا ہے. ابھی ترجمے کے ساتھ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. 20 آیات، ٹاپک ہے پسندیدہ اور ناپسندیدہ صدقہ اور خیرات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن نقدر عليه احد. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. ذرا سوچئے بچے کے لیے کتنی مشقت کا وہ وقت تھا، اور ماں کے لیے بھی، اور ساری زندگی انسان مشقت میں رہتا. کبد کلیجے کو کہتے ہیں، جگر لیور، یعنی ساری زندگی خون جلانا پڑتا ہے بندے کو. یہ دنیا کو آرام سے تھوڑی ملتی ہے. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا. کیا یوں ہی سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے؟ ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے، سو اس سے یہ نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا. اور تو کیا سمجھا کہ گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو، یا خاکسار مسکین کو. پھر ان لوگوں میں ہو جاتا ہے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کی وصیت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے. اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا، یہ کم بختی والے ہیں، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی. اون کو ذہن میں لائیے، چکن کو جب آپ 470 کے ٹیمپریچر پہ اون کو گرم کر کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. فی آمدم محمد دادا. تو ایک آیت اس میں آپ کو ایمان سے متعلق دکھی، 17. صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں جب تک کہ عمل اس کی گواہی نہ دے. ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمۃ. آپ اور میں ذرا سا اس کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں اپنے لیے عمل کے نقطے کیا ملے. زندگی کی مشکلات میں ثابت قدمی اور حوصلے سے کام کرنا، دوسروں کو دے کر صلہ پانے کی توقع، اور دوسروں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے سے بچنا، تکبر سے بچ کر اپنی آخرت سنوارنے پر مال خرچ کرنا، یتیم اور حاجت مند رشتہ داروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا. دیکھیے اللہ نے آپ کو مجھے دینے والا ہاتھ بنایا نا، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. ہم سب کے رشتہ داروں میں کوئی تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ جس کے پاس شاید اس وقت اپنی ضروریات پوری کرنے کا بھی وقت نہ ہو. تو اس وقت جہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے قسم پرسی میں جو شکار ہیں رشتہ دار، ان کی مدد فرما، ان کو ہمارا محتاج نہ کر، تو ہی ان کو کافی ہو جا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ جو اس میں بات تھی نا کہ ایک انسان جس طریقے سے اس دنیا میں سٹرگل کرتا ہے، آپ کسی غریب سے پوچھو، وہ کہتے ہیں نا زندگی کی حقیقت کو حکن کے دل سے پوچھ. یہ جو یہ شیر لانا ہے، آپ کی میری زندگی میں اللہ نے کتنی آسائشیں دی ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک مزدور کا انتقال ہوا جو مسجد پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا، سارا دن محنت سے کام کر کے گیا، اور اگلے دن صبح فجر کے بعد شاید روزہ رکھا ہے، اور ایک دم ہارٹ اٹیک ہوا تو مر گیا. میرے ذہن میں آیا کہ کوئی بوڑھا سا ہوگا بیچارہ نا، کمزور، ذہن میں نئیو سا بندہ آیا. تو اور ہمارے ساتھی گئے اس کی گھر والوں کے ساتھ. یقین کریں کہ ہمارے یہاں کے کلوزٹ جتنے، دو چھوٹے چھوٹے کمرے، پلستر بھی نہیں. خود مزدور ہے، سیمنٹ ہوتا تو اس نے خود ہی کر لینا تھا. 4 سال کا 5 سال کا بچہ. وہ چھوٹی سی ویڈیو انہوں نے اس کے گھر کی جب بھیجی، میرا تو اس رات کہہ سکتی ہوں کہ میرا وہ کانٹوں پہ گزری کہ اللہ ہمیں تو نے کتنی نعمتیں دی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ جس کو اللہ دے وہ راضی رہے، دوسروں کا حصہ ڈالیے. آپ صرف افطاری کی پلیٹ بنا کر اس میں سے اپنی مرضی کی چیز کھا کر باقی کو ٹریش کرتے وقت اس بات کو یاد رکھیے گا، جتنا کھانا آج ہمارا نیکیوں کے نام پہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے نا، اتنے میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی ایک غریب کا ایک پورا دن گزر جائے. پیسہ ضائع نہ کیجیے. یہ پیسہ جو ہے نا، یہ آخرت کے چپو ہیں. کسی نے کہا کہ آخرت کی کشتی کو چلانے کے لیے پیسے کے چپو چاہیے. اللہ نے آپ کو دیے، اس میں کوئی گلٹ بھی نہیں ہے کہ آپ پیسے والے ہیں. اللہ کا شکر ہے پیسے والے. امیر امیر ہونا, غریب غریب ہونا, یہ کوئی نیچرل تو نہیں ہے, یہ نیچرل ہے. نہ اسلام میں سوشلزم کی گنجائش ہے, نہ کمیونزم کی. اللہ کے نبی کے دور میں اگر بلال غریب تھے, عبداللہ بن مسعود غریب تھے, تو آپ دیکھیے عبد الرحمن بن عوف امیر تھے. حضرت عثمان کا تو آج تک اکاؤنٹ موجود ہے سعودیہ میں. بس فرق پتہ کتنا ہے کہ آج امیر فلانٹ کرتا ہے, اس کی امیری دکھتی ہے جب اس کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے, یا وہ گھر بناتا ہے, یا وہ سجاتا ہے. اور اس دور کے امیروں کی امیری دکھتی تھی جب اسلام کو کوئی ضرورت پڑتی تھی, کہ ابو بکر ایک ضرب المثل بن گئے کہ پورے گھر کا سامان لیا. اسی طرح غریب اس وقت گلٹ میں بھی نہیں تھا, ہائے میں بیچارہ. یہ آج کے مسئلے میں یہ ہوا ہے کہ آج غریب بیچارے گلے سڑے آم کھاتے ہیں مکھیاں بن بناتے ہوئے, اور امیر اچھے خاصے آموں میں سے اوپر میرا لے آدھی آدھی انچ کا چھلکا بھی اتار کر ٹریش کر دیتے ہیں. تو وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. پھر آپ دیکھیں کہ سورت کا نام کیا, سورت بدلت. آئیے یہاں بیٹھ کر آج اس خوبصورت سے موقع پہ دعا کرتے ہیں, اللہ ہمیں اپنے گھر کا دیدار کرا. آگے دیکھتے ہیں جی سورت شمس. اب ذرا سا دیکھیے گا سورتوں کے نام, کائنات. آپ کا خیال ہے قرآن پڑھ کے اللہ سے محبت ہوتی ہے, اللہ آپ کو کائنات کی چیزوں سے محبت دلائیں گے. ابھی شمس آ رہا ہے تو آگے کہیں لیل آئے گی اور دہا آئے گی. 15 آیات ہیں, 91 نمبر کی سورہ. شمس سورج کو کہتے ہیں, اور اس سورت کے اندر جو پیغام ہے اللہ کی قدرت کے اظہار کے ذریعے قسمیں کھائی گئی ہیں, اور اس کی 15 آیات ہیں. اس کے اندر ایک تھیم نوٹ کر لیجئے, کامیاب کون. اب اس میں اپنے آپ کو لے کر سوچئے گا, اللہ مجھے آپ کو سب کو کامیاب کرے ان آیات کے مطابق بنا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی, قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے, قسم ہے دن کی جب سورج کو نمایاں کرے, قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے, قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی, قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی, قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی, پھر سمجھتی اس کو برائی کی اور بچ کر چلنے کی. جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. اے اللہ آج ہمارا تزکیہ کروا دے. اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا, قوم سموت نے اپنی سرکشی کے باعث جھٹلا دیا, جب ان میں سے ان کا ایک بدبخت کھڑا ہو گیا اور انہیں اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو. ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کوچھیں کاٹ دیں, بس ان کے رب نے ان کے گناہوں کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا. وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے. اللہ نہیں ڈرتا. اللہ نے جیسے پچھلی قوموں کو پٹک کے رکھ دیا نا, آج کے سرکشوں کو اللہ ایک سیکنڈ کے بھی فرکشن میں پٹک کے مار سکتا ہے. اللہ کو ترس نہیں آتا, کیونکہ وہ سمجھ ہے, وہ بے نیاز ہے. وہ بچہ گود میں ہوتا ہے تو ماں کو لے جاتا ہے, اور 5-10 سال کے بعد بچہ ہوا تو اللہ اس بچے کو بھی موت دے دیتا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں پڑتی. اصل بات ہے کہ یہ دنیا کی کامیابی اور ناکامی یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کو مجھے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے. زلزلہ قیامت اصل مسئلہ آخرت ہے, اس کے ناطے اپنے لیے گول لیجئے. اور وہ کیا ہے کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ کیسا ہیبت ناک دن ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے. تصور میں لائیے کسی بھی چیز کو, سانپ کو ہی لے آئیں, شیر کو لے آئیں, ہاتھی کو لے, کچھ لے آئیں, اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ کیسا ہیبت ناک دن ان کی طرف دوڑا چلا آ رہا ہے, تو ان کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں اور ان کے پاس بولنے کے لیے الفاظ نہ رہیں. اپنے لفظوں میں ہم کہتے ہیں ان کی گھگھی بند ہو جائے, خوف کی وجہ سے زبان بند ہو جاتی ہے. تو تھوڑا سا اپنے بولنے پہ قابو پانا ہے, بہت بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی. فیتھ ان ایکشن کیا ہے کہ اللہ نے چونکہ ہمیں نیکی اور بدی کا شعور دے دیا ہے, لہٰذا ہم نے نیکیوں کی طرف بڑھنا ہے اور برائیوں سے چھٹکارا پانا ہے. نیکیاں کرنا آسان ہے بنسبت گناہ چھوڑنے کے. گناہوں سے بچنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور اکثر ہی ایک جملہ نکلتا ہے مجھ سے, اور وہ کیا ہے کہ 10 نیکیاں کر لیں آسان ہے, اس کے مقابلے میں ایک گناہ چھوڑنا مشکل ہے. آپ لوگوں کو نیکیاں بتائیں, میں یہاں آ کر بیٹھوں اور میں آپ سے کون سنیں یہ آیت نا 20 دفعہ پڑھیں, بڑا ہی ثواب ہوگا. اچھا سورت دوحا کو اب 101 بار پڑھ لیں, یہ ہوگا وہ ہوگا, تو میں بھی اچھی لگوں گی, آپ بھی خوش رہیں گے. یہ پڑھ لو یہ فضائل, یہ پڑھ لو وہ. اور آپ تصور کی نگاہ میں لائیے, اللہ کے نبی مکہ شہر ہے, खाना काबा के आगे एक छोटी सी वो कह लें कि चादर डालकर अल्लाह के नबी बैठे हैं, उनके सामने कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं, कुछ पानी की बोतलें रखी हैं, कुछ है, और आप आने वालों को कहते हैं ये लो ये पानी की बोतल फूकिए जाके पियो तो देखना तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। सारी लड़ाई इस चीज़ की थी कि ये छोड़ दो ये छोड़ दो। आज भी लोगों को दीनदार बहुत अच्छे लगते हैं, पर उनकी वो बात अच्छी नहीं लगती कि ये क्या बात है, आप तो बहुत ही जजमेंटल है, आप तो टू मच ही कह रहे हैं, आप तो ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं। तो तस्किया करना आसान नहीं है, आपके बच्चे के हाथ में छुरी हो आप उसे छुड़ा नहीं सकते, तो ख्वाहिशों की छुरियाँ और दुनिया की रौनकों की छुरियाँ छुड़वाना ये बहुत मुश्किल है। लिहाजा इसके लिए अपने ऊपर काम खुद करना है, अपने जाहिर और बातिन को पाक रखना है। पहले फिर भी आसान था, अब मुश्किल हो गया, ये हाथ में गैजेट है। आज आपका बच्चा एक क्लिक पे वो देख सकता है जो मेरा ख्याल है कि आप अपनी शादी के शुरू के दिनों में शौहर बीवी भी अकेले देखने के लिए कितने पापड़ बेलते होंगे। बिलीव मी, अडल्ट ओनली, ये बेटा बच्चों के देखने वाली नहीं, ये बड़ों के देखने वाली है। बाद में पता चला ये तो बड़ों के भी देखने वाली नहीं। अपनी निगाह को पाक रखें, इबादत में लज्जत आएगी, कानों में कभी कोई गंदी बात ना आने दें। और आज दुनिया के जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, इस तज़किए की तो दुनिया वालों को नहीं दीन वालों को भी ज़रूरत है, शागिर्दों को नहीं उस्तादों को भी इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। पिछली सूरत क्या थी? शम्स। शम्स किसकी दलील है? सुबह की। तो अगली सूरत देख लें, लैल, रात। 21 आयात है, 92 नंबर की सूरा है। आग के साथ झूठ बोलने वालों का अजाब और परहेजगारों की निजात। मोमिन की मंजिल अल्लाह की रज़ा को पाना है। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लैलि इज़ा यख्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला वमा खलक़ अज़्ज़कर वल्उन्सा। कसम है रात की जब वो छा जाए, और कसम है दिन की जब वो रोशन हो, और कसम है ज़ात की जिसने नर और मादा को पैदा किया। यकीनन तुम्हारी कोशिश मुख्तलिफ़ किस्म की है, जिसने दिया अल्लाह की राह में, और डरा अपने रब से और नेक बात की तस्दीक करता रहेगा तो हम भी इसको आसान रास्ते की सहूलत देंगे। हाँ लेकिन जिसने बखीली की और बेपरवाही बरती और नेक बात को झुटलाया तो हम भी इसकी तंगी और मुश्किल का सामान मुयस्सर कर देंगे। इसका माल इसे ऊंधा करने के वक्त कुछ काम न आएगा। बेशक राह दिखाना हमारा जिम्मा है और हमारे ही हाथ में आखरत और दुनिया है। दुनिया भी अल्लाह से मिलती है तो आखरत भी उसी से मिलेगी। मैंने तो तुम्हें शोले मारती हुई आग से डरा दिया, जिसमें सिर्फ वही बदबख्त दाखिल होगा जिसने झुटलाया और इसकी पैरवी से मुंह फेर लिया। और इससे ऐसा शख्स दूर रखा जाएगा जो बड़ा परहेजगार हो, जो बाकी हासिल करने के लिए अपना माल देता है। किसी का इस पर कोई एहसान नहीं कि जिसका बदला दिया जा रहा हो, बल्कि सिर्फ अपने परवरदिगार बुजुर्गो बुलंद की रजा चाहने के लिए। यकीनन वो अल्लाह भी अन करीब रजामंद हो जाएगा। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह जैसे तू सहाबा से राजी हो गया हमसे भी हो जाए। अल्लाह उनके लिए तो तूने कुरान में सर्टिफिकेट दे दिया ना, रदी अल्लाह अन्हु व रदुन, हमारा किसी को ना बता, बस तू राजी हो। जब तेरे पास आऊँ तो तू मुझसे राजी हो, नाराज ना हो। क्या पता चला कि हार आखरत की हार है और जीत आखरत की जीत है। दुनिया की ना हार परमानेंट है और ना जीत। अगर आज आपको यहाँ कोई कामयाबी मिल रही है ना, तो बेफिक्र हो जाए, ज्यादा दिन नहीं रहेगी। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं ना, ज्यादा देर नहीं करेंगे। आज जरा सी आप कोई बुरी बात करें, सब तारीफें तनकीद में बदल जाएंगी। दीजिए लोगों को, दीजिए दीजिए, एक दिन ना करेंगे अगले दिन वो आपसे नाराज होंगे। तो असल में फिक्र आखरत, इसको अपना असल मसला बनाएं। और इस दुनिया में आपको मुझे क्यों भेजा? बीज डालने के लिए। दुनिया की जमीन पे रहकर सिर्फ दुनिया में बीज डालेंगे ना, तो कल वहाँ बैरन लैंड होगी। आपको पता कि कब्र जमीन का बस एक टुकड़ा है, खाली है। जैसे नया घर लेते हैं तो खाली होता है ना, फिर उसको आप सजाते हैं संवारते हैं। आपने फरमाया कि अपनी नेकियों से वहाँ जन्नत ले लो या वहाँ जहन्नुम के टुकड़े बना लो। तो क्या पता चला, जरखेज जमीन पर बीज डालने वाला फसल पाता है। सभी को पता है किसान है वो पहले जमीन देखता है फिर बीज डालता है, क्योंकि बीज पैसे का आया हुआ है। और पत्थर की चट्टानों में दाने बखेरने वाला असल से भी महरूम हो जाता है, क्योंकि उसका बीज उगेगा ही नहीं। आप और मैं आज ज़िंदगी में चेक करें, मैं अपना वक्त कहाँ लगा रही हूँ, क्या वो जरखेज़ जगह? मैं अपना माल कहाँ लगा रही हूँ, मैं अपनी स्किल्स किसको दे रही हूँ, मैं अल्लाह की दी हुई नेमतों में से क्या पा रही हूँ, और उसके ऑपोजिट कहीं मेरी ज़िंदगी पत्थर की चट्टान में दाने बखेरने में तो नहीं गुजरे। आप देखिए कि जो भी यहाँ बनाएंगे वो यहीं छोड़ जाएंगे, तो गोया के पत्थर में आपने अपनी ज़िंदगी डाल दी। हम सब की ख्वाहिश होती है कि जहाँ हम आगे जाएँ ना, वहाँ हमारे पास कुछ हो। जब पता होता है ना आपने कहीं रहना नहीं, तो उधर से खुद ब खुद दिल उठने लग जाता, क्या करना है, नया सोबा, चले ही जाना है, ये घर तो भेज ही देना, छोड़ो पर्दे अगले ही घर में लगाएंगे। होती है ना ये सोच, आज इस फिक्र आखिरत को अपने साथ लेकर जाए। आज आपने घर जाकर पूरे घर का राउंड ट्रिप लगाकर एक एक जगह पे खड़े होके सोचना है कि मेरी इस पूरी जिंदगी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हैं जो मैं कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, महंगी सस्ती की तो बात ही कोई नहीं है, करिए इस्तेमाल। आपको अल्लाह ने घर दिया, यूज़ कीजिए, नो प्रॉब्लम। 6 गाड़ियाँ आपके घर में और 6 ही चलाने वाले हैं और 6 के ही अपने मामूल हैं, ठीक है, कोई स्टाफ नहीं है। आपके मियाँ करोड़ों कमाते हैं, तो अगर वो कई लाख की गाड़ी ले लेते हैं, उनका शौक है। मसला सबसे ज़्यादा ये है, नंबर एक है चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही, शो पीस, डेकोरेशन पीसों का क्या इस्तेमाल है, और दूसरी बात है गाड़ियाँ सिर्फ शो की। एक किसी की बात जो मेरे कानों में पड़ी, फ़ोन पे उनके किसी ने घर से बताया कि उनकी बेटी का कोई रिश्ता देखने आ रहा है, तो ये ब्रदर ज़रा बाहर थे कहीं, तो वो बेटे को कह रहे हैं वो फलां गाड़ी वो उधर है वो उधर है, सारी घर के दरवाजे के आगे खड़ी कर दो। अब मुझे बताइए लोग उसकी बेटी देख कर जाएंगे या गाड़ियाँ, होगा धोखा कि नहीं, और बाद में फिर धोखे ही हुए, वो तो गाड़ियों के लिए आए थे, एक दो गाड़ी ली तो बाद में छोड़ दिए। ये ना कीजिए, यानी नंबर एक इस्तेमाल कीजिए, और नंबर दो इस्तेमाल किस चीज़ पे हो रहा है, उस नेमत को इस्तेमाल करके कर क्या रहे हैं। आपके पास कपड़े हैं, पहनिए, पहन के करते क्या हैं। चंद दिन पहले मुझे सलफ सालेहीन का एहतमाम दिखा, नमाज पढ़ने से पहले क्या करते थे, रात को तहज्जुद में जागते थे तो क्या करते थे। ये लोगों को समझ ही नहीं आता कि अपने लिए पहनना कि अल्लाह के लिए पहनना कि लोगों के लिए पहनना, इसका फ़र्क है। कहते हैं जब किसी को दिखाना ही नहीं तो पहनने का क्या फ़ायदा, क्योंकि हमारा कल्चर है फ्लॉन्ट करने का, शो मारने का। हालांकि जिस चीज़ को आप अहम समझते हैं आप उस पर खर्च करते हैं। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि नेकियाँ करने वाले के रास्ते अल्लाह आसान कर देता है, तो नेकियाँ करनी है। कोशिश तो कीजिए, बार बार आप सब प्यारों को कहती हूँ टेक अ स्टेप, एक दफ़ा बिस्मिल्लाह तो कही, लब्बैक तो कहिए, गिरने नहीं देगा रब आपका हाथ थाम लेगा। वो ज़ात जो रात की घड़ियों में दरख्तों की शाहों पे पतली पतली टांगों वाले परिंदों को नहीं गिरने देता, वो आपको गिरने देगा। तवक्कुल करके तो देखिए, उसकी किताब को थाम कर को तो देखिए, फिर ये पता चला कि आखिरत में हमारा माल काम नहीं आएगा, अभी इसको वहाँ मूव करना, ट्रांसफ़र कर दीजिए अपने माल को। आजकल तो बाहर होती है ना ट्रांसफ़र, और क्या क्या तरीके हैं, जेल करते हैं शायद आप लोग, एक क्लिक पे आपके पैसे मेरे, मेरे पैसे आपके इधर एक सेकंड में होते हैं। इस दुनिया के माल को आखिरत में मूव कर दीजिए, इससे पहले कि आपको अफसोस हो कि मेरा अकाउंट क्लोज हो गया। दुनियावी माल को अपनी पाकीज़गी के लिए और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए इस्तेमाल करना है, और फिर अल्लाह से दुआ करनी है कि वो हमारे इसको कबूल भी करें। आगे हैं ये वो दो खूबसूरत सूरतें जो अल्लाह के नबी के साथ है, और मैं आपको यहाँ से आगे बता भी सकती हूँ। 93 नंबर की सूरह है ना, इधर से आगे की जितनी भी सूरतें हैं ना, इनका किसी न किसी तरह अल्लाह के नबी की ज़िंदगी और आपकी ज़ात से ताल्लुक है। ये सूरत 93 नंबर की है, 11 आयतें हैं इसमें। लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई से जोड़ना और मायूसियाँ दूर करने का नुस्खा, यानी आप कह सकते हैं कि अगर आप कभी डिप्रेस हों, बिलीव में मैं कोई वजीफ़ा नहीं बता रही ना टोटका बता रही हूँ, बिल्कुल इसके मानों पे गौर करते हुए अगर आप इस सूरत के ऊपर तवज्जो करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि इस सूरत में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मोहब्बत से तसल्लियाँ दी हैं, तर्जमा पढ़ लेते हैं तो फिर इसको देखेंगे। तो क्या है सूरत दोहा में टॉपिक लिख लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की इनायात, यानी क्या क्या रहमतें थी नबी के ऊपर अल्लाह की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल-आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा। कसम है चाश्त के वक्त की और कसम है रात की जब छा जाए, ना तो तेरे रब ने तुझे छोड़ा है और ना वो बेजार हो गया। यकीनन तेरे लिए बात का दौर पहले दौर से बेहतर होगा। ये तसल्लियाँ आसमान से आती हैं जो बंदा अल्लाह की रज़ा पे राज़ी होता है। तुझे तेरा रब बहुत जल्द इनाम देगा और तू राज़ी हो खुश हो जाएगा। क्या इसने तुझे यतीम पाकर जगह नहीं दी और तुझे राह भूला पाकर हिदायत नहीं दी और तुझे नादार पाकर तवंगुर यानी दौलतमंद नहीं किया, यानी सब कुछ किया। बस यतीम पर तू भी सख्ती न किया कर और न सवाल करने वाले को डांट डपट और अपने रब की नेमतों को बयान करता जा। फामा बि नेमति रब्बिका फहद्दिस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हर वो गम आया जो मुख्तलिफ इंसानों को आता है। आप देखिए, आप इमेजिनेशन में लाइए, एक बच्चा आपकी फैमिली में ऐसा पैदा हो कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके बाप का इंतकाल हो चुका हो। तसव्वुर में लाइए, जिस दिन वो पैदा होगा तो लोग खुश ज़्यादा होंगे या रो ज़्यादा रहे होंगे। फिर उसका कोई और भाई बहन भी ना हो, फिर उसकी माँ भी चंद साल में फौत हो जाए, फिर उसके बाद वो रिश्तेदारों के हाथों में पले, फिर ज़रा सा बड़ा हो तो अपने से 15 साल बड़ी उम्र की औरत से उसकी शादी हो, जो उससे पहले 2 दफ़ा शादीशुदा है, बच्चों वाली है। ये 8-7 चीज़ें तो मैंने अभी गिन ली हैं, बाकी तो अभी जो दीन के जो गम थे मसले थे उसको तो पीछे कर दें। हम ऐसे बच्चे को क्या कहते हैं? हाय बेचारा, हाय बच्चा, बाप नहीं है, कौन पालेगा? लिख लें ये यतीम मक्का। इसी के ऊपर हमारी एक सीरीज़ भी है, दुर्र यतीम, छोटी सी 3 दिन की सीरत की सेशन थे, दुर्र यतीम और डेजर्ट्स रोज़, सहरा का पुल, ये हमारे ऐप पे भी मौजूद है। अल्लाह के नबी के सारे गमों को सामने रखें और अपने ऊपर लें। कोई एक गम है ना तो क्या हुआ, मेरे नबी जैसा दुनिया में तो कोई था ही नहीं, उनको जब अल्लाह ने रखा तो क्या हुआ। लेकिन हमें दुनिया क्या सिखाती है, नहीं नहीं बोलो, बातें करो, लोगों को बताओ मेरे साथ उसने ये किया, मेरे साथ उसने क्या किया। तो ज़रा सा नबी का सिखाया हुआ अखलाक और किरदार, आपने फरमाया कि चुप कर जाओ, बोलो नहीं, नजा मन समत, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। आज आपने एक काम करना, कोई दुख आए ना, कोई आपसे पूछे क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, कैसी तबीयत है, अल्लाह का शुक्र है, कहीं दर्द है, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं बोलना। आप अपने हर जुमले में लफ्ज़ अल्लाह लगा लें, आप देखेंगे कि आपकी गीबतें ख़त्म, आपके शिकवे ख़त्म, और ये जो हमारी ज़ुबान है ना, ये हमें बहुत मुश्किलों में डालेगी। हदीस में आता है कि इंसान के जिस्म के सारे अज़ा हर रोज़ सुबह उठ के ज़ुबान के पास आते हैं और उसने कहते हैं हमारे मामले में अल्लाह से डरती रहना, अगर तू सीधी रही तो हम भी सीधे रहेंगे। तो इस पर चंद कोटेशंस नोट कीजिए, जो चुप रहने लगे इससे बोलना आ गया। जो बोलता है ना वो बड़ी गलतियाँ करता है, चुप रहने वाले की तो एक ही गलती है ना कि वो जवाब नहीं दे रहा। इन्नी नज़र तो ले रहमानी सोमा, 16 पारे में हम करके आए हैं मरियम के नाम पे, कि बोलना नहीं, कोई इल्ज़ाम लगा रहा चुप, कोई आपको बुरा कह रहा चुप, किसी को आपसे कोई गलती होगी चुप, मुहासफा ज़रूर करें लेकिन जवाब ना दें। मियाँ सब को गुस्सा आए आप चुप हो जाएं, तो आपको गुस्सा आएगा तो वो चुप हो जाएंगे। और याद रखिए, जो बीवियाँ अपने शौहरों की बात मान लेती हैं ना, एक दिन फिर उनके शौहर उनकी मानने लगते हैं। जो खामोश आवाज़ों को सुनने लगे वही कानों वाला। आप ज़रा सी खामोशियों से दोस्ती तो करें, नहीं बोलना, नहीं बात करना। एक बुज़ुर्ग थे तो बीमार थे, लोग उनकी आदत के लिए आए, क्या हाल है बुज़ुर्गो, अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत कैसी है, अल्हम्दुलिल्लाह, दर्द तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा क्या हुआ था, गुस्से से बोले, जो बात मैं मुंह पे नहीं लाना चाहता तुम क्यों मुझसे गुलवा रहे हो। हम भी लोगों को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उनके अंदर की बात ना लाएं, तो कम बोलिए ज़्यादा सुने। आप चुप रहेंगे ना तो आपको देखिएगा आपकी बात की कदर ज़्यादा होगी। हम बहुत बोल के भी अपनी वैल्यू ख़त्म करते हैं। तो फेथ इन एक्शन क्या है कि मुश्किलात हमें निखारने के लिए आती हैं, मुश्किलों में अपने अंदर की सलाहियतों को पहचानना और निखारना, चुप रहना, चुप का रोज़ा रख लें, भूखे हैं चुप का रोज़ा, परेशान है चुप का रोज़ा, बीमार है चुप का रोज़ा, और अगर उम्र बढ़ती जा रही है ना 50, 60, 70, 80, और चुप रहना सीखें। शिकवों को शुक्र में बदलिए, जब किसी काम की जिम्मेदारी ले लें तो हर मुमकिन तरीके से इसे निभाएं, और कमज़ोरों के साथ शफकत और मदद का मामला करना है, कल अल्लाह हमारी कमज़ोरियों में भी हमारा साथ देगा, यतीमों से अच्छा सलूक करना है और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना है, और अल्लाह के नबी से ताल्लुक़ को महसूस कीजिए। अब अगली सूरत इसी का पेयर है, 94 नंबर की सूरह है, 8 आयात हैं इसमें। और शर्ख, शर्ख को कहते हैं खुला, शर सदर, तंगी के बाद आसानी है। 1 से 8 आयात हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे बुलंद है। आइए, अब छोटी छोटी सूरतें शुरू हो गई हैं, इस पे तो बस जज्बात के साथ महसूस करें। ये भी सूरत नबी से मुतल्लिक है, देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लक सदरक ववदअना अनक बिसरक अल्लज़ी अनकद ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उस्री युस्रा, इन्ना मअल उस्री युस्रा। अल्लाह क्या तसल्लियाँ दे रहे हैं, आइए अपनी ज़ुबान में सुनते हैं। क्या हमने तेरा सीना खोल नहीं दिया? अल्लाह आज हम सब के भी सीने खोल दे, हक़ को कबूल करना आसान कर दे, तेरे दिए हुए अहकाम को कबूल करना आसान कर दे, तेरी किताब को उठाना आसान कर दे, और अल्लाह हमारी ज़ुबान की गिरें ख़त्म कर दे। और तुझ पर से तेरा बोझ हमने उतार दिया, अल्लाह हमारे भी बोझ उतार दे जो हमने अपने ऊपर डाल के रखे हुए। जिसने तेरी पीठ तोड़ दी थी और हमने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। फ़ैज़ा फ़रख तफन सब, बस जब तू फारिग हो तो इबादत में मेहनत कर और अपने परवरदिगार ही की तरफ दिल लगा। ये आपको मुझे क्या बताएंगे कि दौरे कुरान ख़त्म हो तो लुलु मरजान शुरू कर दो, और फिर उसके बजाय लसीना अमन शुरू कर दो, फिर उसके बाद रोज़ दिन रात अपना कुरान से कुर्ब बढ़ाओ। देखिए, मोमिन की छुट्टी पता कब होगी? या तुहन नफ्सुल मुतमईना। मोमिन इस दुनिया में पिंजरे में रहने वाले कैदी की तरह होता है, जिसे उसका पिंजरा खुलना है उसने उड़ जाना है, और फिर उसको दनौमत रूज की खुशखबरियाँ अल्लाह ने देनी है कब्रों में। अल्लाह हमारी कब्रों में भी ठंडक दे दे। और इससे हमने क्या सीखा? हर मुश्किल से निकलने का एक हल। आज आपको वजीफा देने लगी हूँ बहुत बड़ा, फ़ैन नमाल उसरी युसरा पे। क्या हर मुश्किल से निकलने का एक तरीका, इस मुश्किल से ध्यान उठा ले। जी, बच्चे को चोट लगी हो ना, चुप बैठा होगा, माँ को देखते रोना शुरू हो देगा, फिर वो ज़ख्म देखेगा रोएगा, उसकी माँ क्या तवज्जो, वो देखो क्या हुआ, वो चिड़िया, वो तोता, वो कौवा, वो बिल्ली क्या कर रहे होते हैं, उसको उसका गम बुलाते हैं। तो अपने और दूसरों के गमों को भूल जाइए, छोटी छोटी बातों को नहीं लेना। फिर इसी तरह जिसे अपनी बुराइयाँ दिखने लगी वही काबिल तारीफ है। आप लोगों से तारीफें चाहते हैं ना, तो जब आपकी नज़रें आखिरत पे आएंगे और आपका असल मसला आखिरत का मसला हो जाएगा ना, तो आपको फिर अपनी तारीफ से घबराहट होगी। जो अपने से आगाज़ करे किसका, इस्लाह का, वही दूसरों तक पहुँचेगा। आज लोग हमारी नहीं सुनते, आप कहते हैं बच्चे नहीं सुनते, मियाँ साहब नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। भाई नहीं सुनते तो ना सुने, आप तो अपनी सुनिए। कई दफ़ा हम दूसरों को वो बात कह रहे होते हैं जो हम खुद को नहीं कहते। जो अपनी गलती मान ले वही सही रास्ते पर है। अल्लाह हमें अपनी गलतियाँ दिखा भी दे और फिर उनको मानकर उसकी इस्लाह करने की तौफीक भी दे दे। फेथ इन एक्शन, ज़ाती इबादत के साथ साथ दीन के इज्तमाई कामों में भी हिस्सा डालना है। दीन का काम तन्हा नहीं हो सकता, लोगों के साथ मिलजुल कर दीन को फैलाने की कोशिश करनी है। नसीहत करने के लिए हिकमत और सब्र तहम्मुल का रवैया इख्तियार करना है। याद रखिए कि एक अकेला 2 11 हज़रत मूसा और हारून पे फिट होता है। सूरत आहा में हमने पढ़ा कि जब अल्लाह ने हज़रत मूसा को ख़बर दी वादी तीम में कि आप पैगंबर हैं, फिरौन के पास जाएं, तो क्या कहा, वजल्ली वज़ीर मिन अहली। इंसान के नफ्स को बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने उन पे रहे, अपनी मर्ज़ी से काम करे, जो दिल करे करे, जो ना करे ना करे। मैं आपको अपने ऊपर लेके बात समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि जहाँ ये मौजू आता है मेरे दिल में वो दर्द उठता है जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत ज़रूरी है समझना। आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने लोग दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह उन सब का कबूल करे। कितने लोग हैं जो मस्जिदें बना रहे हैं, अल्लाह सबकी कोशिशों को कबूल करे। मदरसे बनाते हैं, लेकिन क्या वजह है कि बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो रही और बढ़ रही हैं? उम्मत मुस्लिमा को गलबा नहीं मिल रहा, उसकी वजह यह कि हमारे अंदर हारमनी नहीं है, रब नहीं है। एक काम जो एक कर रहा है वो सब ने करना है। अब आप एक कम्युनिटी की मिसाल लीजिए, आप सारे इधर रहते हैं, चलिए हम अटलांटा की बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो नहीं होगा कि सारे एक एक घंटा दूर जाएं, लेकिन अब आप देखिए कि अगर इसी जगह के रेडियस में 5-10 मिनट इधर 5-10 मिनट इधर उधर होते हैं, तो आप इधर भी जा सकते हो, उधर भी जा सकते हो। अब हफ्ते के दिन कोई डिनर है, मिसाल है फैमिली नाइट है जुमे को, कितना खूबसूरत लगे कि गोनेट की पूरी कम्युनिटी की मस्जिदें एक जगह जमा हो और सबको उधर बुलाएं कि आज हम सारे इस मस्जिद में जमा हो रहे हैं। मसलन जी आईसी महीने का पहला फ्राइडे सब गोनेट वाले जीआईसी में आएंगे। फिर वहाँ क्या होगा, इनके इमाम, और इधर और भी दो चार मस्जिदें मैंने सुनी, मदीना इंस्टीट्यूट का नाम सुना, उमर मस्जिद, फारूक मस्जिद, सब आए। 10 मिनट आप बोलिए, 5 मिनट आप बोलिए, कोई एक अच्छी बात आप कर, कितना प्यारा लगता है। देखिए शादियों में सब मेहंदियों के थाल पकड़ते वक्त एक जैसे जोड़े पहन लेते हैं, अच्छे लगते हैं, बहनें अच्छी लगती हैं एक जैसे पहनती हैं, दीन वाले क्यों नहीं एक जगह जुड़ते, ये मेरा सवाल, अभी तक तो मुझे इसका जवाब नहीं मिला। जहाँ जाकर बैठे हैं सबसे पहले वहाँ पहले से मौजूद दीनदारों को रब्ता किया, अल्लाह जानता है ये ह्यूस्टन से लेके नॉर्वे और इधर उधर पाकिस्तान से लेके आज तक भी यही बात है। कुछ ज़रूरी तो नहीं है कि एक ही टीचर हो, चार टीचर इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे भी बात कर सकते हैं। इससे फ़ायदा पता है क्या होता है कि डबलिंग नहीं होती, वो नहीं नहीं मुझे तो आज उधर जाना है, मुझे तो उधर जाना है, तो उम्मत का रिसोर्स बचता है। आज आप देखिए कितनी मस्जिदें जहाँ नमाजों के वक्त पे इतने लोग नहीं होते जितने जुमे में होते हैं, इसी तरह आप देखिए कि वही मस्जिद के कितने रूम खाली होते हैं, रिसोर्सेज बचाइए। अगर एक जगह फंड रेजिंग होगा तो उन्हीं लोगों ने उधर पैसे देने हैं जो दूसरी जगह भी देखे हैं। फिर एक एक दिन में चार चार प्रोग्राम में आपको समझ भी नहीं आता कि कहाँ क्या होगा, तो ज़रूरत है इस बात की बहुत ज़रूरत है कि हम अल्लाह की मोहब्बत में इकट्ठे हों। देखिए जैसे अपने बहन भाइयों से प्यार होता है ना, अपने मैके से भी प्यार होता है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जिधर बैठकर आपको अल्लाह की किताब मिलती है आपको उससे प्यार होता है, उन टीचरों से भी प्यार हो जाता है, उन साथियों से मोहब्बत होती है, उन ज़मीन के टुकड़ों से जगहों से मोहब्बत होती है। लेकिन कभी ये कहना कि हम जुड़े हैं, जैसे मैं अपने ऊपर कहूँ, हमारे अपनी साथी हैं बहुत अच्छी मुझे अजीज़ हैं, तो एक दफ़ा उन्होंने एक जगह बुलाया, पूरा घर भरा हुआ था उनका, तो वो शुरू में क्राउड को कंट्रोल करने की कोशिशें थी और उन्होंने वहाँ बातें और भी बहुत अच्छी की, उसमें एक बात उन्होंने कह दी, आप सब नूरुल कुरान से जुड़े। अब उन्होंने कोई गलत कहा, कोई बुरा लफ्ज़ बोला, मैंने वही उनके हाथ से माइक लेकर मैंने कहा कि आप सब कुरान से जुड़े तो आपकी ज़िंदगी में खुद ही नूर आ जाएगा। मैंने उनको रोक दिया, मैंने कहा आप लोगों को कुरान की दावत है। पता क्या बात है, जब मोहब्बतों के माहवर बदल जाते हैं ना तो फिर फिरकाबाजी है। ये आज सबका मसला क्या काबिल कि लोग अल्लाह के बारे में चुप है, और किसी बच्चे की बात करो किसी बड़े की करो तो उनके लंबी लंबी कहावतें होती हैं। तो ये जो हम इससे सीख रहे हैं ना, नबी अकेले थे, अल्लाह ने उनको अबू बकर दे दिया तो दो हो गए, अली रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत खदीजा, और होते होते आप देखिए कि अल्लाह ने उनसे वो काम ले लिया जो कि मुश्किल था। आप देखिए इस वक्त दुनिया में कितनी गंदगी है, आपके बच्चों की आंखें वो देख रही हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था बड़े होने तक, आज भी नहीं अल्लाह का शुक्र गंदगी को मिटाएं। अगर आपका मेरा दिल करे ना कि गोनेट का इलाका साफ़ हो जाए, सोचे ना, तो मैं साफ़ करूँ या कोई और करे, मैं तो शुक्र ही करूँगी ना, मैं अकेली करूँगी या दो लोग करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और आप कह के नहीं सिर्फ मैंने साफ़ करना है क्योंकि मीडिया पे मेरी तस्वीर जाए कि मैंने इसकी सड़कें साफ़ की, तो ये है खुद नुमाई। अल्लाह करे कि हमें अल्लाह के दीन के नाम पे उनके बंदों को बेहतरीन मैनेज होकर अच्छे तरीके से करने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद नसीहत करने के लिए हिकमत और सब्र तहम्मुल का रवैया अख्तियार करना चाहिए, मुश्किलात हमेशा नहीं रहती, सब्र इस्तकामत से इन पर जमने वालों को अल्लाह आसानियाँ देता है, और अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए तहज्जुद में खूब इबादत करनी है। अब यहाँ वक्त तो नहीं है ना ये सूरत शर्ख और सूरत दुहा की तफसीर का, रो के आंसुओं के साथ इसकी इंडेक्स स्टडी होती है, यकीन कीजिए अल्लाह के नबी जैसी शख्सियत और वो हालात जिसमें अल्लाह ने आपको उठाया, और द मैन हु शोक्ड अर्थ, वो इंसान जिसने दुनिया को हिला दिया, वो क्या कहते हैं कि वो बिजली की चमक थी या क्या था, उतर कर हिरा से सुए हरम को आया, आज वही उम्मत है, 1 बिलियन से ज़्यादा, 1.25 बिलियन, चले 2 बिलियन हो गए होंगे अब अल्हम्दुलिल्लाह। वो चेंज क्यों नहीं ला रहे हम, आपके पास वेपन्स थे? नो। हर जंग में आपकी नफरी कम थी, आपके साथी कम थे, टूटी हुई तलवारों से ये दीन फैला है, नसर मिन अल्लाह की वफ़तन करी। आज इस पैगाम को आम करने की ज़रूरत है कि फ़िक्र आखरत को दिल में लाओ। अभी यहीं छेड़िए ना तो थोड़ी सी बात करूँ कि तीन चार बहन भाई इकट्ठे कहीं बैठे हैं, विरासत के किसी मसले पे इख्तलाफ है, बहनों का हिस्सा भाइयों का हिस्सा नहीं देना, वो लेना करना, सब बैठे हैं, इतने में उस कमरे में इतना छोटा सा सांप का बच्चा दिखता है और वो ऐसे ही घूमता हुआ आ रहा है, क्या होगा? याद रहेगा कि अभी लड़ रहे थे, एकदम एक दूसरे के हाथ पकड़ के उसको टेबलों पे खड़ा कर लेंगे, कुर्सियों पे चढ़े जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ। अब सुनिए, बड़ा ही दर्द का जुमला, एक छोटे से सांप को देखकर सारे इख्तलाफात भूल गए भाई बहन। तो जिसको कब्र के सांप याद आए, जिसको जहन्नुम के सांप याद आए। आज सुबह मैं एक हदीस सुन रही थी, यकीन करे कि जहन्नुम के कुछ ऐसे हैं कि जूं ही कोई दरवाजा खोलेगा अंदर से सांप बिच्छू निकलेंगे। जिस दीनदार को ये याद रहते हैं वो फिरके वारियत में नहीं पड़ता, वो अपने नामों की जंग नहीं लेता। सारी दुनिया में मैं अपने नाम के झंडे भी गाड़ दूंगी ना, लेकिन अगर मुझे फिक्र आखिरत नहीं लगी हुई, मेरा असल मसला आखिरत का मसला नहीं बना, तो मैं नहीं बचूंगी। आप सारे बच जाएंगे, मैं नहीं बचूंगी। देखिए शम्मा की तरह ना बने, खुद जलती है दूसरों को रोशनी देती है। अल्लाह ना करे हम कहने वाले जहन्नुम की आग में जले और दूसरे हमारी रोशनियाँ ले आए।